Шилэнж. Шилэнж. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम लिए उपस्थित हैं, जिसमें आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय के सौजन्य से मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से प्रसारित किया जाता है, जिसमें हमारे विदेशों से आए विद्वान जो हिंदी साहित्य से किसी न किसी तरह से जुड़े होते हैं, समय समय पर हम उनका साक्षात्कार आप लोगों तक पहुँचाते हैं, उनको रूबरू आप तक करवाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय में 7-8-9 अगस्त को विश्व रंग का भव्य आयोजन हुआ। उस तहत 30 देशों से जो हमारे हिंदी साहित्य से जुड़े हुए विद्वानगण जो आए थे, वो इसमें उन्होंने शिरकत की, और उनमें से एक हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप दिल्ली भारत से हैं, आप डॉक्टर अंजना सिंगर जी हैं, और स्टूडियो में आपका हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।
मैं डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर भारत से आई हूं और पूरे मॉरिशस को अपना अभिवादन देना चाहती हूं। नमस्कार मॉरिशस, नमन वंदन।
मैं चाहूंगी डॉक्टर अंजना जी, आप अपना परिचय खुद हमारे श्रोताओं को दें कि किस उद्देश्य से आप इस 3 दिन के कार्यक्रम में जुड़ी, और क्या परिचय में आप क्या बताएंगी हमारे श्रोता सुनने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे।
जी जी, मैं विश्वरंग कार्यक्रम में आई थी और यहाँ पर विश्व के हर मतलब कोने से साहित्य की एक अलग धारा लिए हुए, एक अलग रस लिए हुए लोग आए हुए थे। मैंने भी उसमें सहभागिता की, तो ये इस तरह से तो 3 दिन का ये कार्यक्रम रहा और मुझे पूरे मॉरिशस को जानने का मौका मिला। मैं साहित्य से जुड़ी हुई हूँ, मैं लेखन कार्य करती हूँ, सारी विधाओं पर मैंने लिखा है, ख़ासतौर से जो कविता है, पोइट्री है, उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, और बहुत सारी कई किताबें मैंने लिखी हैं पूर्व में। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि एक कस्टम्स सेंट्रल एक्साइज जो एक विभाग था, जो आजकल CGST है, वहाँ पर मैं एक अधिकारी रही हूँ, और साहित्य प्रेम के चलते मैंने उससे त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि मैं साहित्य को एक साधना समझती हूँ। आप समझिए कि कोई भी चीज़, मतलब आप कुछ भी काम करने जाते हैं तो बिना साधना के आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो मुझे लगता था कि मुझे कैसे मैं साहित्य को पूरी तरह से प्राप्त करूं, तो उसके लिए मैंने त्याग पत्र दे दिया, ताकि मैं साधना को एकदम बिना किसी बाधा के, बिना किसी अवरोध के मैं उसको अपने जीवन कर सकूं, अपने जीवन में उतार सकूं, आत्मसात कर सकूं, ये था।
अच्छा, तो यहाँ आपने कहा कि आपने अपने काम से जो है त्याग पत्र दिया, तो उसके बाद शिक्षण से जुड़ी आप।
शिक्षण से जुड़ी,
और शिक्षण में आया साहित्य, जिसकी आपकी एक सपना था आपका कि साधना करना है साहित्य के लिए। और जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि आप अनेक विधाओं में आपकी लेखनी जो है वो चली है, तो मैं चाहूंगी थोड़ा कुछ, जैसे आपने बताया कविताएं ज्यादा आपने की हैं, तो कुछ साहित्य की विधाओं को शिक्षण में, आजकल जो हमारे जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, साहित्य में उतनी रुचि न दिखाकर जो है, क्या ये बात आप इससे सहमत हैं? कुछ इसके बारे में बताएं, कैसे उनके साथ, उनको कैसे आप प्रभावित करती हैं साहित्य की ओर?
साहित्य को मैं मानती हूँ कि साहित्य का अर्थ ही है सबका हित करना।
बिल्कुल,
तो साहित्य में साहित्य मतलब सबका हित। तो साहित्य एक जो हमारे भावों का जो संग्रह है, मतलब कि कह सकते हैं कि जो हम अपने अनुभव और उसके आधार पर, अनुभव और ज्ञान के आधार पर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो ये शिक्षा में किस तरह से महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताती हूँ कि साहित्य में एक तो लोकमंगल की भावना होनी चाहिए, और जैसे कि युवा जो है वो हमारे समाज की रीढ़ है।
बिल्कुल।
तो और साहित्य क्या है? साहित्य हम वही लिखते हैं जो समय काल खंड के
परिप्रेक्ष्य में
हो। और जैसे कि सबसे पहले मैं मानती हूँ कि ये जो साहित्य है उसमें सबसे पहला संस्कृति के प्रचार प्रसार में उसका
उल्लेख
होना चाहिए, उसका योगदान होना चाहिए, जो हमारी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, है ना। कैसे हम अपने देश की संस्कृति को जो है आगे बढ़ाएं, और ताकि, और दूसरा जो है कहीं किसी उसके मन में विकृतियां ना आए, उसमें नई पीढ़ी में विकृतियां ना आए। दूसरा एक कहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना जो सब में होनी चाहिए। कई बार कहते हैं कि एक जो साहित्य रचा जाता है जब कोई आक्रमण होता है या कोई ऐसी विपरीत विषम परिस्थितियां आती हैं देश में, तब राष्ट्रवाद पर साहित्य लिखा जाने लगता है। लेकिन मैं मानती हूँ कि राष्ट्रवाद की भावना हर वक्त होनी चाहिए,
हर नागरिक में होनी चाहिए। कहीं तो, कहीं होती तो है कहीं, लेकिन सुप्त हो जाती है, तो उसको उजागर करने का काम साहित्य ही करता है,
उसको जागृत करना पड़ता है। तो और सबसे बड़ी चीज है मानवतावाद, जो हर व्यक्ति में होना चाहिए। जैसे कि हमारा, जैसे भारत है, मॉरिशस है, हम दोनों में जिस तरह से आपसी मैत्री है, एक मानवतावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस तरह की चीजें होनी चाहिए हमारे युवा पीढ़ी में भी। तो इस तरह से मतलब साहित्य जो है शिक्षा देने का
एक माध्यम है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे आपने कहा कविताओं में आप रुचि रखती हैं, तो किस तरह की कविताएं आप लिखती हैं?
जी मैं जैसे कि छंदबद्ध ज़्यादा, क्योंकि एक सामान्य कविता जो मुक्त छंद होती हैं तो वो लिखी तो जाती है, लेकिन वो भी एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ना कि एक साधारण सी कहानी की तरह या किसी कोई पैराग्राफ उठा के बीच में रख दे, तो वो नहीं। अगर मुक्त छंद भी लिखें तो उसमें एक उद्देश्य होना चाहिए। साहित्य लिखने वाले के लिए या कविता लिखने वाले को मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारा साहित्य, हमारी कविता कोई क्यों पढ़ेगा, तो उसमें अगर कोई उद्देश्य हो,
स्वाभाविक सी बात है, आपने सही कहा कि निरुद्देश्य कोई भी बात अगर लिखी भी जाती है तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता।
तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ जो हमारे छंद परंपरा है, क्योंकि हमारे महर्षि वाल्मीकि और जो है व्यास जी, इन सबों ने जिस तरह का की छंद रचना की है, गोस्वामी तुलसीदास की, रामचरितमानस, सूरदास का उठा के देख लीजिए, मतलब जो जिस तरह का कवित्व उन्होंने प्रस्तुत किया है वो निसंदेह बिना साधना के नहीं आ सकता है। तो हमारी जो आगामी पीढ़ी है, या जो कहते हैं कि साहित्यकार तो बहुत बहुत आ गए हैं, वो सोशल मीडिया पर एक इधर से उठाकर उधर वो देखा देखी जो है साहित्यकार तो आए हैं, उनमें रुचि तो पैदा हुई है, लेकिन साधना की कमी है। तो साधना ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो छंदबद्ध रचनाएँ करूँ। और जैसे कविता लिखने का कैसे है, कभी वो तो एक कवि हृदय होता है, अगर हम बहुत पढ़ते हैं तो मन में एक भावों का आवेग उत्पन्न होता है, तब लेखन की के लिए वो मन करता है कि हम लिखें कुछ भी। और कई बार ऐसा होता है, एक बार का मैं आपको उदाहरण बताती हूँ कि किस तरह से कोई कविता लिखने का मन करता है, कि एक बार मैं जा रही थी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एज अ चीफ गेस्ट। तो वहाँ पर मुझे वो लोग अपना दिखा रहे थे, पूरा जो भी उन्होंने सेटअप किया हुआ था, जो कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में एक फोटोग्राफर था। तो वहाँ सारे लोग इकट्ठे थे, पर एक जो फोटोग्राफर था वो, उसको मैंने देखा कि वो जगह हर जगह कवरेज कर रहा था, लेकिन उसका एक पैर था और एक हाथ था।
अच्छा।
और एक हाथ में भी तीन उंगलियाँ थी। अब आप सोचिए कि वो, और लेकिन वो इंसान जिस तरह से कवरेज दे रहा था वो गजब का था, मतलब कहीं कोई कोई एक जो सामान्य व्यक्ति है
शायद
वो भी ना दे पाता। तो उसमें मेरे दिमाग में अचानक चला और एक कविता बन गई कि है पक्का आत्मबल जिसमें नहीं विपदा से भी डरते, भले तकदीर दे धोखा नई तस्वीर वे रचते, मिटा सकती नहीं उनको कोई भी भाग्य की रेखा, भरोसा कर्म पर जिनको कर्म फल वे सदा चखते, न रहते वे निराशा में कर्म पथ की कठिनता से, न होती व्यग्रता उनमें देह की निशक्तता से,
बहुत खूब,
विबनते दीप की ज्योति जुमेटे विश्व अंधियारा, महकती है धरा ऐसे माँ के प्यारे सपूतों से।
बहुत खूब आपने एक कहते ना, जहाँ कोई ना पहुँचे, जहाँ सूरज की किरणें भी ना पहुँचे, वहाँ भी कवि का हृदय जो है, उसकी भावनाएं जो है ना,
बिल्कुल
वहाँ पहुँच जाती हैं। और उस तरह से आपने उस फोटोग्राफर से कितनी सुंदर भावनाएं जो है वो निकाल कर उकेर दी, तो इसके लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। मैं अंत में पूछना चाहूँगी आपसे कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है साहित्य को लिखने के लिए या साहित्य की ओर प्रेरित होने के लिए?
मैं कहूँगी कि ये प्रेरणा जो है एक परिवार का माहौल ऐसा है, शुरू से जब मैं, मुझे याद है कि बचपन से मेरे मदर थी, माँ जो है वो एक घर में आध्यात्मिक माहौल था, उनके पिता भी जो है यानी मेरे नाना वो भी बड़े आध्यात्मिक किस्म के थे, तो वहाँ से एक प्रेरणा मिलती रही और पढ़ाई लिखाई मैंने बहुत पढ़ा है।
अच्छा।
पढ़ने में इतनी रुचि थी कि मैं बहुत किताबें पढ़ती थी और बचपन से ही मन करता था कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन वो बाल मन, चूंकि घर में कोई लेखक नहीं था।
अच्छा।
पढ़ने वाले तो सभी थे लेकिन लेखक कोई नहीं था, पर मन में एक जो कहते हैं ना एक बीजारोपण वहीं से शुरू हुआ कि मन करता था लिखूं, तो मैं लिखती थी छोटी छोटी कविताएं और फिर उसके बाद जो है करियर बनाने के लिए काम करती रही, मतलब ये जो साहित्य से थोड़ा सा दूर रहना पड़ा, फिर जो है आगे शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन यहाँ पर भी जो मेरे पति हैं वो भारत में सर्वोच्च सेवा में हैं वो।
अच्छा।
तो लेकिन वो बड़े विद्वान हैं।
अच्छा।
तो इकोनॉमिक्स में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी पकड़ है, और दर्शन के तो वो इतने ज़्यादा विद्वान हैं कि अगर सोते सोते भी कोई प्रश्न उनसे कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से दार्शनिक उसमें घंटों प्रवचन कर सकते हैं। और आजकल तो श्री रामचरितमानस पर उनकी उनका जो है पूरा शोध चल रहा है।
अच्छा।
तो पढ़ते हैं और मुझे सुनाते हैं, तो कहते हैं कि इसी तरह से जैसे घर का माहौल होता है, आसपास का हमारे माहौल होता है, वो प्रेरित करता है कि हम जो है कुछ लिखें, कुछ करें और आगे बढ़ें।
चलें, ये बहुत अच्छा है, किसी लेखक को कोई ऐसा साथ मिल जाए
जी
जो उसे प्रेरित करता रहे हर टाइम, हर समय जो है उसे जागृत कराता रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है अंजना जी। और मैं कहूँगी कि आपकी लेखनी यूं ही चलती रहे सभी विधाओं पर, और आपको इसी शुभ कामनाओं के साथ मैं कहूँगी कि आप आगे साहित्य की ओर अपना समर्पण देती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम क्षितिज कार्यक्रम के अंत तक पहुँच चुके हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद।
धन्यवाद।
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।